सच्चे के झूठ आपको ये चंद बोल इसलिए सुनवाए कि आप लोग वाकई गौर करें कि हम क्या थे और क्या बन गए। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमा दे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला थोड़ा सा एकेडमिकल पार्ट है हमारा आज का, और कुछ चीज़ें सूरत साफ शुरू करने से पहले जिनकी हमें ज़रूरत है जिससे हमें फ़ायदा होगा। ये इसीलिए ज़रूरी होता है कि ऐसे ही बिल्कुल जैसे आप किसी जगह जाते हैं तो उससे पहले आप वहाँ का टेम्परेचर चेक करते हैं, वहाँ का माहौल क्या है। तो अब आप सबके हाथों में कागज़ कलम होंगे तो आप इस फ़ायदा इसे उठाएंगे कि सूरत साफ क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, यानी बैकग्राउंड ऑफ सूरा क्या है, हम इसमें ये देखेंगे। इसी तरह साबिका सूरतों से इसका क्या ताल्लुक है, यानी बैकग्राउंड ऑफ सूरा एंड रिलेशन ऑफ प्रीवियस सूरास। और इसी तरह फिर आगे जाकर हम सूरत में क्या होगा, यानी कह लीजिए कि सूरत के लफ्ज़ों पे जाने से पहले हम सूरत सफ ए टू जी देखेंगे कि इसके क्या मुख्तलिफ मतलब हैं, क्या चीज़ें अल्लाह ने बयान की हैं। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई सूरत, मुझे तो ऐसे लगता है कि सूरत एक पूरा शहर होती है। और आप, अब मैं ट्रेवलिंग में जब जब होती हूँ तो मुझे हर शहर हर मुल्क में जाकर मुख्तलिफ फीलिंग आती हैं। कभी वेदर फ़र्क है, कभी टाइम जोन फ़र्क है, कभी कुछ ना कुछ। तो इसलिए मैं इन सूरतों को हमेशा ही आमतौर पे भी हम करते हैं, और अब तो स्पेशली हम इस सूरत को समझना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि सूरत सफ का पस मंज़र क्या है और ये सूरत अपने से पीछे वाली सूरतों के साथ कहाँ है। दो चीज़ें होती हैं, एक बजाते खुद सूरत, ये ऐसे ही जैसे गाड़ी, लेकिन वो किस पार्किंग लॉट में खड़ी है, वो किस सड़क पे चल रही है। तो लिहाजा बजाय इसके कि हम डायरेक्ट सूरत पे चलें, हम ये देखेंगे कि कुराने पाक में सूरत सफ कहाँ आती है। चंद बातें हैं तो बहुत सारी, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो बताना चाहूँगी जो आपसे मुतल्लिकात में है, मोटी मोटी बातें। हम पूरे कुराने पाक को अगर 7 हिस्सों में डालें तो सूरत सफ छठे हिस्से में आती है। अपने लफ्ज़ों में आप कह लीजिए कि मंजिल जो 7 दिनों में पढ़ी जाती है तो सूरत सफ उसमें तरतीब या मौजू के एतबार से कह लीजिए छठे हिस्से में आती है। सूरत सफ से अगली सूरत सूरज जुमा है, यानी बस ऐसे 1 2 3 करके इसके बारे में कुछ चीज़ें नोट करते जाइए। सूरज जुमा है, सूरत सफ का जोड़ा जुमे की सूरत में है। कुरान पाक में हर चीज़ जोड़ों में है, ये तذکرہ मौजूद है, सूरह फुरकान में भी आता है, यानी अल्लाह के सिवा हर चीज़ जोड़े में है। तो हम अपनी डिटेल स्टडी में जब भी कोई सूरत करते हैं तो उसमें हम डिस्कस करते हैं कि इस सूरत का कॉम्बिनेशन क्या है। सिर्फ मिसाल दे देती हूँ कि जैसे सूरत फातिहा का जोड़ा सूरत नास है, वो पहली है तो वो आखिरी है। तो सूरत सफ का जोड़ा सूरत जुमा है, उसमें बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। मसलन आप देखिए कि सब्बह और युसब्बिहु, ये सूरत सब्बाहा से शुरू हो रही है जो माजी का सीगा है, माजी में किसी ने अल्लाह की तारीफ की मुराद। जबकि सूरत जुमा में युसब्बिहु का लफ्ज़ है जो कि मुजारे और हाल, यानी जिसमें फ्यूचर एंड प्रेजेंट टेंस है, तीनों को जोड़ दें तो जोड़ा पूरा हो जाता है कि माजी में भी, हाल में भी और मुस्तकबिल में भी अल्लाह ताला की तारीफ होती रही। फिर इसी तरह कुरान पाक की सूरतों में 5 सूरतें जिनको मुसब्बिहात कहते हैं, ये सूरत मुसब्बिहात के सिलसिले के बिल्कुल बीच की सूरत है। 5 सूरतें हैं और आप देखते हैं कि इस मुसब्बिहात में से भी ये बिल्कुल मिडल में आती है। तो जब आप इस सूरत को इसकी मौका महल के एतबार से देखते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत सूरत है। अल्लाह ताला ने इसको कुरान पाक के उस हिस्से में रखा जिसको मुसब्बिहात कहते हैं, और मुसब्बिहात अपनी जगह एक अपना मजमून है। अगर मुझे कहीं 2 माह का कोर्स करवाना हो तो हो सकता है मैं वो सारी सूरतें आपके सामने रख दूँ, किसी ना किसी हद तक हम उसमें कुछ बात कर सकते हैं। तो कुरान पाक की इकाई आयत है, एक आयत। कुरान पाक में तकरीबन 6,000 से कुछ ज़ायद आयतें हैं। आयत कहते हैं निशानी को जिससे किसी और चीज़ की तरफ गाइडलाइन मिल जाए। सूरत सफ के अंदर टोटल 14 आयात है और हर आयत अपनी जगह एक खूबसूरत आयत है। सूरत सफ से पीछे अगर हम देखें तो सूरत मुमतहिना, जिसमें हिजरत करके आने वाले घरानों के अंदर जो मसाइल आए थे उसका तज़किरा है। इस सूरत में यानी सूरत सफ़ को अगर आप समझना चाहें तो सूरत सफ़ में मुसलमानों को जो पैगाम दिया गया है वो क्या है, इर्द गिर्द बाहर की दुनिया में जो हो रहा है उसके साथ तुम कैसे रिलेट करोगे। किसी भी सूरत को समझना हो ना तो उसका ज़माना नज़ूल समझना बहुत ज़रूरी है। तो सूरत सफ़ तकरीबन जंगे ओहद जो सन 3 हिजरी और शवाल के महीने में हुई थी और मामला बराबरी पे गया था, ना तो फतह थी ना शिकस्त थी, लेकिन कह लीजिए कि जो फतह थी वो शिकस्त में बदलती भी दिखी, उसमें नाजिल हुई। खाम मुसलमान और मुनाफिकीन, इनको जिहाद में साबित कदमी, अमीर की इताअत, इत्तेहाद और इत्तफाक की अहमियत, इसी तरह मुनज्जम होना ऑर्गेनाइज्ड होना, सफ़ बंदी के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मैदान जंग में अल्लाह के नाम पर खड़ा होना, इसकी बहुत ज़रूरत थी। ग़ज़वे ओहद, मैं आपको ख़ुलासा दे देती हूँ, ग़ज़वे ओहद में एक भगदड़ मच गई थी कि जीती हुई फतह शिकस्त में बदल गई, या कह लीजिए कि जो फ़ायदे मिलने थे वो नहीं मिले। तो अब ज़रूरी था कि ये जिनसे गलती हो गई है, ऐसी कि एक प्रोग्राम हुआ और उसमें साथियों से कोई गलती हो गई, जो मुंतज़मीन थे जो अंसारुल्ला थे उनसे कोई कमी बेशी हो गई, तो अब उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए ताकि अगली जंग में फिर ऐसे ही हो। तो ज़रूरत थी कि कोई डिवाइन मैसेज आए, तो सूरत सफ़ नाजिल हुई। या आज आप में से बहुत सारे को पहली दफ़ा पता चला होगा कि सूरत आल इमरान का तज़किरा, सूरत आल इमरान में ग़ज़वे ओहद का जिक्र है, और ये सूरत सफ़ वहाँ से उठकर इधर जुड़ती है। यानी कुरान की सूरतें कब नाजिल, ये इतना खूबसूरत इल्म है कि मैं अगर ये सूरत सफ़ आपको कोई और इन डेप्थ पे ले जाओ ना तो कम अज़ कम 2-3 दिन सिर्फ मैं इस पर बात करूँ। लेकिन आपको एक रब्त मिला, ग़ज़वे ओहद की भगदड़ के बाद लोगों को डिसिप्लिन सिखाना था, और वो मुनाफिकीन जिन्होंने उसमें गड़बड़ें की, जो ऐन वक्त पे साथ छोड़ गए, फिर साबित कदम ना रहे, फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर की जो बात ना मानी कुछ लोगों ने, यानी जो भगदड़ मची उस वक्त, उन सारी गलतियों को सामने रख कर लोहा गरम देख कर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल की कि जो एक किस्म का ट्रेनिंग सेशन था। अल्लाह ताला की सुन्नत है लोगों को मैदान में डालकर उनकी तरबियत कराता है। कुछ लोग कहते हैं हमें सारे कागज़ दे दें हम खुद ही कोर्स कर लेंगे, हमें ऑडियोज़ दे दें हम ये कर लेंगे, ऐसे कैसे होता है, फिर तो डॉक्टर भी खुद ही बन जाएं। कोई कहता है रेसिपी बुक दे दीजिए जाए मैं उसी से कुछ खा पकाना सीख लूँगी। याद रखिए जो काम करते हैं वही सीखते हैं, और जो सब्र करते हैं वही सीखते हैं, और जो गाइडलाइन को फॉलो करते हैं ना वो कामयाब होते हैं, बाकी सब बिखर जाते हैं। वक्ती तौर पे बहुत पंपी एंड ग्लैमरी लगता है, दीन के काम के अंदर जो फितने आते हैं ना ये सूरत आपको उसका इलाज बताएगी। इस सूरत का जो मिजाज है ना वो जोड़ने वाला है, वो तो इंशाल्लाह जब हम आयतें पढ़ेंगे तो साथ उसमें भी बातें आएंगी। आज माजरत के साथ हमें दीन के काम में भी नहीं पता कि दीन का कौन सा काम मेरे हक में ज़्यादा बेहतर है, या इस वक्त किस काम की ज़रूरत है, या इस वक्त मैं क्या करूं कैसे करूं। फिर अगर आप तरतीब में देखें तो इससे पीछे 28वें पारे में सूरह मुजादिला, फिर हशर, फिर मुमतहिना, 3 सूरतें, और ये तीनों उसी तरतीब से आ रही हैं। इनमें मुनाफिकीन की एक्टिविटीज़ का बहुत जिक्र था। सूरत सफ़ में अल्लाह ताला का तलीमा तकूलून माला तफलून, कि तुम गुफ्तार के गाजी बनने की बजाय किरदार के गाजी बनो, बातें थोड़ी करो काम करके दिखाओ। मुखलिस मददगार कैसे बनते हैं, अंसारुल्ला बनने की दावत इस सूरत में, दर पर्दा अल्लाह के नबी के दौर के उन मुखलिसीन का भी इसमें तस्करा कर दिया कि जिनकी कोशिशों से भगदड़ के बाद फिर भी अल्लाह के नबी की भी जान बच गई और मुसलमान दोबारा स्टेब्लिश हो गए। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। याद रखिए कि गलबा इस्लाम और इजहार दीन की खुशखबरियाँ आपको इस सूरत में मिलेंगी। असल में इस सूरत का जो थीम है ना वो आयत 10 में आएगा आगे, वो इंशाल्लाह साथ ही करेंगे, कि इस दुनिया में अल्लाह के दीन को गालिब करना, यानी इस पूरी सूरत का जो एक अमूद कहते हैं ना, जिसको एक वो पिलर जिस पे ये सूरत चल रही है, वो क्या है? अल्लाह के दीन को दुनिया में गालिब करो, और जिनको गालिब करना है ना, उनको डांट पड़ रही है कि सीधे हो जाओ, तुम शुहदा हो, तुम गवाह हो। मतनी सूरत है, 6 पैराग्राफ है इसमें, 14 इसकी आयतें हैं, जो इंशाल्लाह कल बताऊंगी आपको उसकी डिटेल, लेकिन अभी सिर्फ आप इसका इर्द गिर्द का मामला समझिए। अल्लाह सुबहाना ताला ने इस सूरत में दीन के गलबे, यानी ये वो दीन है जिसमें गलबे दीन का 2 मरतबा जिक्र है। आयतें लिख लें, अभी जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, आयत नंबर 9 में और आयत 14 में, के हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। फिर एक और इस सूरत की खूबी लिखी है कि इसमें लफ्ज़ अद्दीन, अलिफ लाम दाल या नून, यानी लफ्ज़ अद्दीन जिसमें लाम जिन्स का है, ये इस्तेमाल हुआ है। हाकमियत, अल्लाह की हाकमियत को इस दुनिया पे कैसे नाफिज किया जाए, ये इस सूरत में आपको मौजू मिलेगा। फिर इसी तरह से आप इस सूरत को जब देखते हैं ना, तो आपको इसमें जो बड़े बड़े पैगामात मिलते हैं ना, उसमें से एक बात ये है कि मुसलमानों के ऊपर कुछ अरसे के बाद ऐसा दौर ज़रूर आता है कि जब उनको कुरान से रहनुमाई की ज़रूरत होती है। अल्लाह सुबहाना ताला ने कुरान पाक में जो ये तरतीब दी है ना हमें, ये तौफीकी है। मुख्तलिफ सूरतें, कभी छोटी सूरतें, कभी बड़ी सूरतें, कभी इसको आगे रखो, कभी पीछे। जब भी नबी सल्लम पे कोई सूरत नाजिल होती थी, तो आप फिर सहाबा को हुक्म देते थे कि इसको वहाँ रख दो, इसको वहाँ रख दो, और इसी तरह रखो। आमतौर पर जो मारूफ तरीन चीज़ है ना, वो 7 7 हिस्ब है। हमारे उर्दू कल्चर में उसको मंजिल कहते हैं, अरब कल्चर या अरब कुरानों में आप देखेंगे ना, तो 7 हिज्ब यानी अहजाब है। असल में ये बाद में डिसाइड किया गया था कि एक हफ्ते में पूरा कुरान हो जाए, क्या तरीका इख्तियार किया जाए, तो 1 से लेकर 2 फिर 3, यानी कुरान पाक का वो हिस्सा जो अमूमी तौर पे सहाबा कराम एक हफ्ते में पढ़ते थे। अल्लाह अकबर, इतना कुरान वो पढ़ जाते थे और उनका दिल नहीं भरता था। तो वो मैंने जो भी उस दिन लेक्चर आपको भी बताया ना, अमल और ईमान अला, क्योंकि जो उससे ताकत मिलती थी ना, उसको नेकियों में ढाल लेते थे। जैसे आप चेंज करते जाते हैं ना, चेंज बना के चीज़ों को इधर से उधर समेटते जाएं, तो चीज़ें जो हैं वो फिर देर तक चलती हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए इस सूरत को जाकर 28वें पारे में क्यों रखा? इसलिए, बड़ी अहम बात है, अगर ये आल सूरह आल इमरान के बाद हो जाती ना, तो हम जो पूरा कुरान पढ़ चुके हैं, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मिलनी कोई नहीं थी। सूरत अल सफ़ की ज़रूरत कुरान पढ़े हुए जो नहीं है उनको नहीं है, ये कुरान वालों को ज़रूरत है, ये पढ़ाने वालों की सूरत है। जो एक बार कुरान पढ़कर अपने आप को क्या समझ कर, अपने आप को उस डंडी से तोड़कर ज़्यादा ग्रोइंग फील करते हैं, उनकी सूरत है। देखिए, डॉक्टर जो होते हैं ना, वो कुछ अरसे के बाद दोबारा रिफ्रेशिंग कोर्सेज करते हैं, तभी चलते हैं, क्योंकि बीमारियां भी फैलती हैं, बदलती हैं, जरासीम बदल जाते हैं, ये दवाइयां बदल जाती हैं। वो डॉक्टर जो 1965 में डॉक्टर बना था, वो आज डॉक्टर नहीं रहेगा अगर वो उसी पे चल रहा होगा, वो अप टू डेट नहीं होगा। तो ये सूरत उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो दीन के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो कुरान पढ़कर अब इस जज्बे में है कि अच्छा अल्लाह हमसे इस दीन का काम ले ले। और इतने अजीबोगरीब तरीके से वो दीन का काम करते हैं कि खुद हैरत होती होगी उस काम को भी, कि तुम कर क्या रहे हो मेरे ऊपर, लेकिन सिर्फ सवाब का शौक होता है। नीयतें भी अच्छी होती हैं, इरादे भी बहुत अच्छे होते हैं, और उस बच्चे की तरह एक फीलिंग भी होती है कि अब्बू आप मेरी उंगली ना पकड़े, नहीं, मैं नहीं छोड़ू। बच्चा हमेशा हाथ छुड़ाता है, तो बाप फिर उसको उंगली से नहीं, फिर वो कलाई से पकड़ लेता है कि तुम इस दुनिया के बाजार में खो जाओगे। याद रखिए, थोड़ी सी ड्राइविंग सीख कर अगर आप घर के बाहर इर्द गिर्द गलियों में चलाएंगे तो बच जाएंगे गाड़ी, लेकिन अगर आप हाईवे पर रोड डाल गाड़ी डाल लेंगे तो फंस जाएंगे, और जिसको चलानी आए और रोकनी ना आए वो तो यकीन ही मरेगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इस तरतीब को हमारे लिए इसलिए रखा कि जब एक बंदा पहले पारे से होते होते 28वें पारे तक पहुंच चुका होता है ना, तो एक तो ये फीलिंग आने लग जाती है कुरान पढ़ लिया, फिर साथ ये आती है पढ़ाना है, अब नेकी की, अब नेकी करानी है, और फिर बंदा उसके बाद आगे चलता है और फिर वो अपनी मर्जी के साथ वो समझ लेता है पढ़ लिया तो पढ़ाना आ गया, और फिर इसी तरह से बाकी चीज़ें। यानी ये सूरत आपको दीन की ऑर्गेनाइजेशन सिखाएगी, स्टेप्स, जैसे अभी सिस्टर आमिना ने कहा ना कि हमने स्टेप मिसिंग किए हैं, अभी हमारी इकरा बिस्मी रब्बी का नहीं हुई, अभी हमारा क्यामुल लैल नहीं पक्का, अभी हमारा क्यामुन नहार नहीं पक्का, और हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए। तो ये सारी चीज़ें आपको इस सूरत में इंशाल्लाह ताला दिखेंगी, और जब आप पूरे कुरान को खोल के पढ़ते हैं ना, आप हैरान हो जाते हैं कि ये किताब है जिस पे PhD करने की ज़रूरत है। मेरी सारी ज़िंदगी इस किताब पे लग जाए तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने आटे में नमक से भी कम सीखा है इसमें से। जितना मैं इसको पढ़ती जाती हूँ ना, मुझे उतना अपनी कम इल्मी का एहसास होता है, उतना मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ये कैसे है, ये क्या है। तो याद रखिए कि जो 7 मंजिलें और 7 हिस्से हैं ना, ये सहाबा के दौर में और नबी के दौर में मौजूद थी, दो तकसीमें बाद में हुई जिसका जिक्र नबी सल्लम और सहाबा के दौर में नहीं मिलता। एक है कुरान के 30 पारे, लिख लें, नबी सल्लम के दौर में 30 पारों का तसव्वुर नहीं था, ये बाद में हुआ। ईमान का ग्राफ कम हुआ, पहले 7 दिन में कुरान पूरा होता था, कुछ ईमान कम हुआ, अब थक जाते हैं, अब बोर हो जाते हैं, अब ये है वो है, हफ्ते में नहीं होता हमसे। तो फिर उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक कुरान को 30 हिस्सों में तकसीम किया गया था कि चलो अब 7 दिन में नहीं पढ़ सकते तो 30 दिन में तो पूरा कर लो। आज हमारा क्या हाल है, रमज़ान में एक कुरान पूरा करते हैं कि चलो 30 दिन रमज़ान के रोज़ का एक एक पारा पढ़ लो और बाकी 11 महीने इस पर नहीं करते। फिर इसी तरह और बहुत कुछ हुआ, ये इसका सबका ताल्लुक उलूमुल कुरान से है, जो इस वक्त थोड़ा बहुत ही दे सकती हूँ, ज़्यादा नहीं दे सकती। लेकिन अब जब 30 पारे देखते हैं ना, तो कभी कभी तरतीब बहुत बिगड़ी भी है। मसलन अगर आप देखते हैं कि सूरह हिजर की एक आयत 13वें पारे में, बाकी पूरी सूरह 14वें पारे में, अलिफ लाम रा से शुरू होती है ना, ये बाद में हुआ। अल्लाह सुबहाना ताला ने नबी सल्लम पर सूरतों की सूरत में, और बल्कि बाद सूरतें भी कई मौक़ों पे उसकी कोई एक आयत नाजिल होती थी, कोई दूसरी में होती थी। इसीलिए अगर आज आप अरब कुरान पकड़े ना, जो अरबी होता है, तो उसमें आपको पारों का कोई तसव्वुर नहीं मिलता, और हमारे देसी लोग उसको नहीं देख सकते। तो एक तरतीब 30 पारों की, ये नबी के दौर में नहीं थी, ये लिख लें आपके काम की चीज़ है। दूसरी तकसीम क्या थी जो सहूलत के लिए की गई, इसको रुकू कहते हैं। रुकू का लफ्ज़ क्या है, रकाआ। कुरान का इतना हिस्सा जो एक नमाज की एक रकत में पढ़ा जा सके। अल्लाह के नबी तो दो दो तीन तीन सूरतें भी पढ़ लेते थे, बाद वालों को फिर एक एक रुकू करना दिया गया कि चलो एक रकत में पढ़ो, तो तवील सूरतें रुकुओं में तकसीम कर दी गई। आखिरी पारे की अक्सर सूरतें सिर्फ एक एक रुकू पर मुश्तमिल है, क्योंकि उनको आप एक रकत में आराम से पढ़ लेते हैं। अब ये छोटी सूरतों में तो हुआ, ज़रा सी तवील सूरतों में आप देखेंगे, ये जितना भी 28वें और 29वें पारे में ना, तो दो दो रुकू की एक सूरत है। फिर जो सूरतें ज़रा उससे तवील हुई, उसमें आप देखेंगे कि तीन तीन और चार चार रुकू हैं। ये भी एक बड़ा दिलचस्प इल्म है, आप जाकर बाद में अपने मुसहफ को खोल कर ज़रा देखिएगा तो आपको इसमें भी अच्छा लगेगा। यहाँ तक कि जब आप तवील तरीन सूरत सूरत अल बकरा पे पहुँचते हैं तो 40 रुकू बन जाते हैं, 40 रुकू बन जाते हैं। ये तकसीम भी बाद में हुई। इसमें हर रुकू में अमूमी तौर पे ख्याल किया गया था कि मौजू पूरा हो जाए, इसलिए अब आपको ये एक रुकू अगर पढ़ते हैं ना, तो वो एक किस्म का टॉपिक पूरा हो जाता है। अक्सर आप देखते हैं हमारे देसी कल्चर में, दर्स भी देना हो तो एक पूरा रुकू पढ़ा जाता है, या बच्चों को सिखाना है या कुछ भी किया जाता है, लेकिन सहाबा के दौर में रुकू और पारे नहीं थे। इसके बाद क्या हुआ, आज से पीछे, यानी उधर अल्लाह के नबी के दौर से नहीं, इधर से जब पीछे करते हैं ना, तो कुराने पाक में मक्की और मदनी सूरतों के कुछ जोड़े बने थे, उनको इकट्ठा किया गया। और आप जितना ज़्यादा कुरान के करीब जाते हैं ना, आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर सिर्फ उसकी आयतें समझ के पढ़ के समझ आ जाता है ये मक्की है कि मदनी है। जब आप कोई 10वीं की दफ़ा कुरान पढ़ेंगे ना, तो आपको बताना तो नहीं पड़ेगा ये मक्की या तुन मदनी या तुन, खुद ही पता लग जाता है। और आप जब 15वीं की दफ़ा कुरान पढ़ेंगे ना, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये मक्की दौर के किस दौर की है। मक्की दौर फिर 3 दौरों में है, मतनी दौर है, कौन से शुरू है, आप आयतों के साथ इस तरह रिलेट करने लग जाते हैं, हम मिजाज वो होती हैं, जैसे सिंकनाइज करते हैं ना आप अपने फोन को कंप्यूटर के साथ लगाते हैं तो वो सिंकनाइज होने लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह बार बार की तहे, बार बार का कुरान के साथ मुतालिया, आपको ऐसे लगता है जैसे ये आपकी कजन्स हैं, मिजाज समझते हैं अपनी कजन्स का, फिर आपको ये अपनी बहनें लगती हैं। यानी कुरान की हर सूरत आपको एक बोलती बालती बातें करती सूरत दिखाती है और आप बिल्कुल समझ जाते हैं। जैसे आप सूरह में हिजर कहूंगी, मुझे फौरन जहन में आ जाएगा कि ये नबी के उस दौर की सूरत है। सूरह अनकबूत समझूंगी, फौरन समझ जाऊंगी ये आखिरी दौर मक्का का, जिसमें शदीद जुल्म था। सूरत आप देखिए और वो फिर पूरे पूरे जोड़े हैं। यानी दिस इज ब्यूटीफुल नॉलेज, ब्यूटीफुल नॉलेज। इसके बाद आपको नहीं याद रहता कि आज कितने लोग कोरोना के मरीज हैं और कितने, आप दुआएं कर देते हैं, खबरें नहीं सुनते, इतनी परेशान नहीं होते आप। इन चीज़ों में अपना वक्त लगाइए और आप महसूस करेंगे कि जब आप और करीब है ना, जैसे मैं पहले दूर से देख रही थी, फिर मैं करीब आई, फिर करीब आई, होते होते जब आप करीब होते जूम आउट करते हैं ना, तो फिर आपको हर सूरत का एक एक थीम आता है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 21 साल से दौरे कुरान हो रहा है और तब से ही ये आदत थी शायद कि हर साल का कोई थीम। इसी अमेरिका में मैंने कोई 15 कुरान, 15 तो नहीं, 10 के बाद फिर एक और कराया इधर। यानी एटलीस्ट मैंने 21 से शुरू करके, आप 10 ले लीजिए, और एक तकरीबन 11 दौरे कुरान मैंने अमेरिका से कराए हैं और हर एक का थीम अलग था। ये जब आप और करीब जाते हैं और आप मुझे हर सूरत का नाम लेती हैं तो मुझे वो सारी की सारी चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि हर सूरत का एक सेंट्रल पॉइंट होता है। इंशाल्लाह इस सूरत में आप पढ़ेंगे मोमिनों के 3 गिरोह। कल बताऊंगी कि असल न्यूक्लियस ऑफ इस्लाम कौन से मोमिन है। ये मैंने आपने पता नहीं किधर कुधर निकल जाना है, फिर ना मैं उधर चल पड़ूँ जो अभी आपको ब्रेक से पहले दिया। बड़ी इज्जतें हैं हमारी दुनिया में, लोग हमारे नाम ले लेके जान जाती है उनकी। क़यामत के दिन पता लगेगा कि न्यूक्लियस थे, न्यूट्रॉन थे, प्रोटॉन थे या इलेक्ट्रॉन थे। हमने तो किनारों में निकल के, वो आधे मुसलमानों ने तो वैसे ही अला हरफिन किनारों से निकल जाना है। वाद उदखुलो फिस सिल्मी काफा वाले बचेंगे। हमेशा मिडल बचता है, किनारे झड़ जाते हैं, किनारे से रोटी भी टूट जाती है। ये सूरत आपको सिखाती है कि अंदर वाले बनो। ये जो लोग होते हैं ना, मुझे अक्सर लोग कहते हैं हमें आपके एडमिन पे बड़ा रश आता है, मुझे कहते हैं लोग, मैं और मुझे मुझे खुद भी बड़े अच्छे लगते हैं एडमिन। कोई सोचता भी होगा कि आप उनकी बड़ी बात मानती हैं या आप उनसे बड़ा प्यार करती हैं, तो मैं कहती हूँ हाँ मैं करती हूँ। वजह क्या है? देखिए दिल में घुसने के लिए अंदर पूरे को पर उदखुलो फिस सिल्मी काफा। ये सूरत सफ आपको बुनियान मरसूस दिखाती है। जितना आप अंदर वाले बनते जाते हैं आप अपने हो जाते हैं। वो कहते हैं ना रांझा रांझा कर दी आप ही रांझा हुई। कुरान का ये मिजाज, सहाबा की बातें देखिए, अबू बकर उमर उस्मान अली और सारे रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, अपनी अपनी जगह वो कितनी खूबसूरत शख्सियात है, लेकिन उन सब की पहचान मोहम्मद मुस्तफा मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फोकस्ड थे उन्होंने, इस्लाम के कह लीजिए इस्लाम के कमरे में अपना हिस्सा डाला। कोई खिड़की बन गया, कोई फर्श बन गया, कोई छत बन गया, कोई स्क्रीन बन गया, कोई जुबान बन गया। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा के लिए नहीं कहा असदुल्ला कौन है, बताइए किसका लकब है? हजरत खालिद बिन असदुल्ला, असद बोला मैंने जी, असदुल्ला किसका लकब है? हाँ सैफुल्ला किसका लकब है? दीन में हलाल और हराम में सबसे ऊपर कौन है? और किसको आपने कहा कि मुफस्सिर कुरान? सब अलग है, असदुल्ला हजरत अली और सैफुल्ला हजरत खालिद बिन वलीद। और मैंने क्या नाम लिया आगे, क्या बोला था लकब? लकब बोलिया मुफस्सिर कुरान इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, हलाल और हराम में माज बिन जबल। ये सारी बांट एक एक में थी, तो सबको जोड़ दो तो बन जानो मरसूस सफ। हम कहते हैं मैं तलवार नहीं मैं सब कुछ हूं। देखिए ये बिल्डिंग जिसमें आप और मैं बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सलामत रखे और इसको बड़ा करे, खिड़कियां भी हैं, शीशे भी हैं, छत भी है, ये प्रोजेक्टर भी है, ये सब मिलकर क्या बना ये क्लासरूम? तो क्या इनमें से कोई गैर अहम है? क्या सबकी अपनी जगह है? तो ये जो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस वक्त, और आप माशाल्लाह जो मेरे साथी घर से सुन रहे हैं, क्या ये सारे इसमें हिस्सेदार हैं कि नहीं? कभी कोई मुझे दुआएं देना, मैं सिर्फ दुआएं लेना चाहती हूँ लोगों से। मैं कहती हूँ दुआएं देनी है तो मुझे दीजिए, तारीफें करनी है तो बाहर उनके सामने कीजिए जो नहीं आते, या उनको नहीं पता तो आपकी तारीफ भी सदका जरिया बन जाए। और अगर आपने कोई माली, कोई पैसे, कोई तोहफा देना है तो हमारे स्कूल को दीजिए, और जब मुझे दुआएं दें तो उनको मत बोलें, जो मत भूलें जो बिहाइंड द सीन है। ये स्क्रीन कौन मूव कर रहा है? आपको मैंने तो नहीं कुछ किया इधर, आपने देखा मुझे कभी कर्सर करते हुए इधर? अभी 2-3 दिन पीछे हम लोग जब गए तो ओहायो में इतनी बड़ी मस्जिद थी, वो नया ब्रांड न्यू हॉल था, बल्कि ओपनिंग हुई उस दिन, 4 स्क्रीनें थी, 2 बड़ी, ये जितनी इससे कोई 4 गुना बड़ी एक एक स्क्रीन थी, वो एक उधर, 2 उधर, एक इधर एक इधर, बड़ा जैसे ऑडिटोरियम टाइप है। तो वो ब्रदर, उनके टेक्निकल ब्रदर थे हेल्प, जो वो आए, मैं गई तो वो पहले से लगे हुए थे करने, तो उन्होंने कुछ मुझसे पूछना चाहा, तो उन्होंने कहा सिस्टर यू विल जस्ट यू नीड सम, मतलब उसका ये था कि मैं चलाऊंगी, जैसे स्पीकर्स जाते हैं वहाँ तो वो अपने लैपटॉप से करते हैं ना, तो मुझे भी पता है कि वो अपने रिमोट कंट्रोल दे देते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि ब्रदर आई विल नॉट मूव माई स्लाइड्स, तो मेरा मुंह देखने लग गया, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने कहा दे विल टेक माई वॉइस ओनली, और देखते ही देखते यूट्यूब खुल गई। वो इतना इम्प्रेस था वो बंदा, ही वॉज अ टेक्निकल पर्सन एंड ही वॉज सो हैप्पी। बाद में वो बात भी करके गया, उसने नहीं देखा था ये कोऑर्डिनेशन किसी और स्पीकर में, क्योंकि मोस्टली ब्रदर्स जाते हैं वो खुद स्पीच करते हैं उनकी लाइव, बल्कि वो लोग लेके दे रहे होते हैं ना, वो समझे कि हम इधर से लाइव, पहले आते ही उन्होंने कैमरे सेट किए हुए थे कि शायद हम वीडियोज में जाएंगे बाहर। तो जब उसने देखा कि मैं सिर्फ इधर अकेली बैठ के बोल रही हूँ और वो इधर, तो ही वॉज इम्प्रेस। दैट इज बुनियादों मरसूस, ये है सूरत साहब, चूंगे डालते जाओ और नाम तुम्हारा भी हो जाएगा। ये उंगली कटा के शहीदों में खून अपना नाम लिख लो, क्योंकि मुझे सिर्फ उंगली ही कटानी आती है, मैं भी जान कटाने वाले ईमान में कोई नहीं हूँ। सारे याद रखिए आला नहीं होते, सबके पास एक्सीलेंसी नहीं होती, सब आंखें नहीं है, सब कान नहीं है, सब जुबान नहीं है। मेरा जिस्म अगर कहे कि ऑल इन वन आई कैन डू बाय माई सेल्फ, मैं ही आंख, मैं ही कान, मैं ही जुबान, तो मैं क्या बनूंगी? बेतुकी बात है। चले आप कहते ठीक है, मैं मानती हूं मैं सिर्फ आंख हूं, तो मुझे इस जिस्म से निकाल दो, मैं आपके जिस्म में, आपके सिस्टम के साथ मैं नहीं चल सकती, आई एम एट माई ओन। ये आज का मसला, ये इल्म वालों के मसले बता रही हूँ, दीन वालों के मसले बता रही हूँ, मैं किसी पर बंदी में नहीं आ सकती, मैं हुकअप नहीं हो सकती, मेरे से आपकी इतनी क्वेश्चन आंसर सेशंस नहीं मेरे से होते। व्हाट आई वांट टू डू, मैं कुछ इधर भी तो कुछ ये भी करूंगी, तो ये आंख मेरे जिस्म से ही लगी है, तब से मैंने देखा है, किसी दिन मेरी ये आंख उठ के मियाँ के साथ तो नहीं लग गई कि जरा थोड़ा उनको भी दिखाऊं, नहीं समझे? ये मिजाज है कुरान का, बी फोकस्ड, बी यूनाइटेड, अपने हिस्से का काम करो और जम जाओ। सूरत सफ पढ़ने के बाद तो मैं कहती हूं गुनाहगारों को और गलत काम करने वालों को तो कुछ भी नहीं होगा, ये हम जैसे जिन्होंने दुनिया को मुश्किल में डाला होता है ना अपने अपने नामों के साथ और अपने रोब के साथ, उनको अपने ईमान की फिक्र पड़ जाती है, अंदर से कुछ भी नहीं निकलना, बास्केट सारी छेदों वाली चली गई, अभी वो मेयार ही नहीं था जो लोग हमें कहने लग गए। लोगों ने झूठी शो मार दी हमारी, तुम जन्नती तुम बोला, और हम कहते हैं मैं हूं ही ना कुछ, तभी तो मेरी इतनी तारीफें होने लग गई हैं, इतने तो मेरे लाइक्स हो गए हैं, इतने तो मुझे सब्सक्राइब करने लग गए, और इतनों को तो मेरा सदका जारी। आप सदका जारिया बना रहे, वो पता नहीं पीछे से पता नहीं कौन सा जारिया बन जाए। तो ये सूरत आपको ये सिखाती है कि आपने जहां अल्लाह ने कह दिया जोड़ दो, ये सूरत वहां जुड़ी हुई है। अभी मैं सारी इस पे बात कर रही हूँ, अभी सूरत की बुनियाद अंदर नहीं जानी दे रही आपको, लेकिन इशारतन थोड़ी थोड़ी बात तो हो ही रही है ना। तो याद रखिए कि कुरान पाक की 7 मंजिलें, 7 ग्रुप, पहले ग्रुप में मक्की सूरत सिर्फ एक है और वो अल-फातिहा है, उसके बाद कितनी सूरतें हैं मदनी, अब आप मुझे नहीं पता आपका लेवल क्या, सॉरी जो नए साथी हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ, लेकिन जो बात मुश्किल लगे सोचें वो आपके लिए नहीं है। आप देखिए, जब आप कुरान खोलते हैं ना, शुरू में मदनी सूरतें, सूरत बकरा, फिर सूरत, बोलिए ना, सबको ही पता है, सूरत बकरा के बाद सूरह आल इमरान, फिर बोलिए सूरत निसा, सूरत मायदा। चार तवील तरीन मदनी सूरतें शुरू में आती हैं। अक्सर लोग कहते हैं बच्चों को कुरान पढ़ाना है, पीछे से शुरू कर दें। अच्छा, आप कुरान तफसीर से पढ़ाती हैं तो पहले 30वां पारा करा दें, क्योंकि वो छोटी छोटी सूरतें हैं, करते हैं ना। रब की बात है कि सिर्फ एक मक्की सूरत फातिहा, जिसके बारे में भी गुमान है कि मक्की भी और मदनी भी है, दो राय है उसकी। चार तवील मदनी सूरतें, बकरा, आले इमरान, निसा और मायदा, ये पहला ग्रुप। फिर दूसरा ग्रुप देखिए, उसमें दो मक्की सूरतें और दो मदनी सूरतें। लिख ले, मैं आपको जल्दी से लिखा ही दूं, मजा आ रहा है कि नहीं? जल्दी तो नहीं है ना किसी को, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, दो मक्की और दो मदनी सूरतें कौन सी हैं? सूरत अलनाम और अराफ मक्की सूरतें, और फिर आगे सूरत अनफाल और सूरत तौबा मदनी सूरतें। तीसरा ग्रुप शुरू होता है, ये तवील सिलसिला है मक्की सूरतों का। 11वें पारे में सूरत यूनुस से शुरू होता है और 18वां 18th पारे तक जाता है। फिर इसके बाद एक मदनी सूरत आती है, और वो कौन सी है, कोई बताएगा आप में से? अल्लाहु नूरु समावाती वल, सूरत नूर। यहां आपको इस कोर्स में ये सारी याद हो जाएंगी, देखिएगा सूरतों की तरतीब। यानी तीसरे ग्रुप में सूरत यूनुस से लेकर सूरत मोमिनून तक सब मक्की सूरतें, और फिर सूरत नूर शुरू हो जाती है, इस पे ये ग्रुप पूरा होता है। उसके बाद फिर मक्की सूरतों का सिलसिला शुरू होता है सूरत फुरकान से। कौन सा पारा? 18th पारा। और जाएगा ये सिलसिला 22वें पारे, 22nd पारे तक जाता है, जिसके बाद सूरतुल अहजाब आती है मदनी सूरत, इस पे चौथा ग्रुप पूरा होता है। मुझे पता है आप इतनी तेजी से नहीं चलेंगे मेरे साथ, लेकिन मैं आपको एक जुमला लिखा दूं। तीसरे ग्रुप के अंदर सारी मक्की सूरतें और आखिरी एक मदनी सूरत नूर, और चौथे में सारी मक्की सूरतें और एक आखिरी सूरत सूरह अहज़ाब। तो आपको क्या लगता है, ये बस ये ऐसी तुक है? ये इल्हामी तरतीब है। इतनी मक्की सूरतें जो सिर्फ तौहीद, रिसाला और ईमान बिल आखिरा पे भरी हुई है, और एक हैवी डोज सूरत नूर रख दी अल्लाह ने। और फिर सूरत नूर को सूरह फुरकान से, तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, फिर सूरह शोरा करते कराते, जब खूब ईमान पंप हुआ ना बंदे के अंदर, तो आगे सूरत अहज़ाब रख दी। आओ लो, अब लो युतनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन के हुक्म, अब लो सूरत फुर अहज़ाब। तो सबको पता है कि खानदानी रस्म व रिवाज तोड़ने से भरी पड़ी है, समझ आए? अल्लाह बीच में एक गियर अप करता है, मक्की सूरतें मक्की सूरतें, ईमान ईमान ईमान, तौहीद, रिसाला, ईमान बिल आखिरा, फिर एक मदनी सूरत देते हैं। तो यहाँ चार चौथा ग्रुप पूरा होता है। इस तरह मक्की और मदनी सूरतों पर मुश्तमिल कुरान पाक के 7 गिरोह जो बने, उनकी तरतीब पे जब गौर करते हैं, तो आपको क्या मिला अभी तक कि मक्की शुरू में मदनी सूरतें, फिर मक्की मक्की मक्की, अब आगे क्या होता है? जो अब आपके लिए असल चीज, जिस पे आपको मैं आज की अपनी ये चंद मिनट में पूरी कर देती हूँ बात, ताकि आप चलें। सूरत सफ मदनी सूरतों में है, पक्की बात है, और ये छठे ग्रुप में है। सूरत सफ उस ग्रुप में जिसमें मुसब्बेहात वाली सूरतें भी हैं। इसका आगाज होता है छठे हिस्से का सूरह कौफ से, कौफ वल कुरान, और सूरत वाकया तक 7 मक्की सूरतें आएंगी। और जो कुरान पढ़ते हैं माशाल्लाह, जिनका रूटीन है, उनको इसका रिदम फील होता है। ये सबसे फेमस हिस्सा है कुरान का, इसी में सूरत अर्रहमान, सूरत वाकया, और इसी तरह करते करते इन सब का मजमून आखिरत है, आखिरत आखिरत। इसी में सूरह रहमान, जिसको कुछ लोग रसूल कुरान भी कहते हैं, लफ्जी हुसन बहुत है इसे। सूरत तूर देखिए, सूरत नजम देखिए, और इन 7 मक्की सूरतों के बाद इस ग्रुप में 10 मदनी सूरतें आती हैं, 10 मदनी सूरास। और पूरे कुरान में इकट्ठी 10 मदनी सूरतें इस हिस्से के अलावा और कहीं नहीं है। बात समझ गए? इसको लोग कहते हैं ये फ्लावर बकेट है, खूबसूरत हिस्सा। हुजम के एतबार से तो छोटा है, क्योंकि देखिए ना पहली 4 सूरतें जो मदनी थी पहले हिस्से में, बकरा, आले इमरान, निसार, मायदा, वो तो तवील थी। कितने पारों पे सूरह मायदा पूरी होती है? 7वें पारे पे थी 4, हुजम बड़ा था। इधर हैं 10, हुजम छोटा है, ये मुराद है। ये इतनी सी बात बस लिख ले। तो यहां 10 मदनी सूरतें, इनका सिलसिला शुरू होता है सूरत हदीद से, जो 27वें पारे की आखिरी सूरत है, और इसको कहते हैं उम्मुल मुसब्बिहात। सब्बहा या युसब्बिहात से शुरू होने वाली सूरतों को मुसब्बिहात कहते हैं, कुछ इनको दिबाजुल कुरान भी कहते हैं। और सूरत हदीद में वो क्लाइमेक्स है, जब कभी आप इसकी भी तफसीर सुनेंगे तो फिर याद ही करेंगे कि ये क्या चीज़ है। और 28वें पारे की आखिरी सूरत सूरत तहरीम पे छठा ग्रुप पूरा होता है, ठीक है? और फिर आखिरी 2 पारे 7वें ग्रुप में है, सूरत मुल्क से लेकर नास तक, ठीक है? तो इन सारी बातों का मकसद क्या था कि ये जो हम पढ़ने लगे ये ऐसे ही नहीं पढ़ने लगे। इस छठे हिस्से में से हम सूरत सफ जो पढ़ेंगे तो इसको पढ़ते हुए नंबर एक, इस पूरे हिस्से में खिताब सिर्फ मुसलमानों से है। नंबर वन लिखिए इस हिस्से की बात, इन सूरतों में, मैं अब सारे को स्किप करके सिर्फ 6 ग्रुप की बात कर रही हूँ जिसमें से एक सूरत हम पढ़ेंगे। 10 सूरतों में जो मुश्तरक चीज़ है, नंबर एक सब सिर्फ सबका खिताब मुसलमानों से है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इन सब का ज़माने नज़ूल मदनी दौर का निसफ आखिर है। कितना था मदनी दौर? 10 साल का था ना, शुरू के 5 निकाल दें, 6 हिजरी से लेकर अल्लाह के नबी के जाने तक आखिरी जो वक्त था, ये सारी उस दौर में नाजिल हुई। और आप जरा समझिए, अब आप इसका मिजाज थोड़ा सा समझ जाएंगे कि ये वो दौर था, ये वो दौर था। फिर बोलती, ये वो दौर था जब मुस्लिम मुआशरा बकायदा इस्टेब्लिश हो चुका था, मुसलमानों को गलबा मिल चुका था, इख्तदार भी अल्लाह की तरफ से अता हो चुका था, गोया कि आप कह लीजिए कि मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी थी। तो इन सारी सूरतों में आपको एक मुश्तरक बात जो मैंने बता दी है कि सब जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मगर कौन सी? बहसियत उम्मत मुस्लिमा। अहम बात बताने लगी हूँ, शराब की बात कोई नहीं इनमें, नमाज की बात कोई नहीं इन सूरतों में, रोजे रखो की बात कोई नहीं है, इनफरादी अहकाम कोई नहीं है इन सूरतों में। समझ रहे हैं? जिन्होंने सीरत पढ़ी और जिन्होंने खास तौर पर मेरे साथ पढ़ी वो तो यकीनन इंजॉय करेंगे। इसी दौर में मक्का फतह हो रहा है, इसी में हुदैबिया हो रही है, इसी में खैबर हो रही है, इसी में तबूक है, इसी में गजवे हुनैन है, इसी में मोता और इसी में यरमुक। यार डशिंग, मेरा तो दिल नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे मुंह से आप छीन रहे हैं ग्लास, क्योंकि टाइम सिर्फ 4 मिनट रह गया। सीरत के साथ कुरान नहीं पढ़ा तो बेकार है पढ़ा। बेकार इसलिए कि आप तो इधर उधर के खिलाफ, आपको कुरान समझ ही नहीं आ सकता। जिसको सीरत हिफ्स नहीं है ना, उसको कुरान हिफ्स नहीं होगा, मानी के एतबार से, लफ्जों के एतबार से तो हो जाता है। तो दौर समझ आ गया ना अब आपको, उस दौर की ये 10 सूरतें आपको बींग अ कम्युनिटी, बींग ऑन द होल जिसको आप कहते हैं ना, दीन का असल रुख दिखाती हैं। इन सारी 10 सूरतों में एक दफा भी यहूद या नसारा या मुशरिकीन ने मक्का से खिताब नहीं है, इल्ला ये कि कहीं डांट हो या तकाबुल हो मुसलमानों को कि तुम उन जैसे ना हो जाना, या दावत दी जा रही है, तबलीग की जा रही है। सारे का सारा खिताब मक्की मुसलमानों से है, और आप वो सूरत पढ़ने लगे जिसका ताल्लुक इनफरादी जिंदगी से नहीं है, इज्तमाई जिंदगी से है। यहूद नसारा का लफ्ज आता है इन सूरतों में, बट निशाने इबरत, नसारा रेफरेंस के तौर पे इधर आएंगे, सूरत में भी आएंगे। आपको एक हल्की सी हिंट दे दूं, सूरत साफ को सूरत ईसा भी कहते हैं कुछ लोग, क्योंकि इसमें हजरत ईसा और उनके मिशन का भी जिक्र आने वाला है। सो इंटरेस्टिंग सूरा। मैं तो कहती हूँ कि इसकी एक एक आयत पढ़ाना, मुझे ऐसे लग रहा है कि आज मैं कढ़ी की चावल खा रही हूँ, कल आपको दाल चावल खिला रही हूँ, परसों भिंडी गोश्त खिला रही हूँ, पर अगले दिन करेले खिला रही हूँ, मुंह में पानी आया किसी के कि नहीं? आप कहेंगे ये क्या खिलाया, आप तो बिरयानी कोरमा कहती तो मजा आता। तो अल्लाह ताला इस सूरत में खास तौर पे और इन 10 सूरतों में कहते हैं, मुसलमानों जिस मुकाम पर आज तुम फाइज किए जा रहे हो वो याद कर ले, शुहदा और गवाह इधर कल तक बनी इसराइल थे, तुमसे पहले किताब इलाही के हामिल वो थे जिनको तौरात दी गई, जिसमें हिदायत थी, जिसमें कानून था, जिसमें शरीयत थी, और तुमसे पहले वो अल्लाह की नुमाइंदा उम्मत थी जिसको अल्लाह ने कितना अरसा दिया पता है आपको? 2500 2500 ईयर्स, यानी 2500 साल कह लीजिए, अल्लाह ने बनी इसराइल को दुनिया में इज्जत दिए रखा, बुलंद मुकाम था, लेकिन उन्होंने अल्लाह की किताब के साथ और अल्लाह के दीन के साथ वो गद्दारी की कि मग़दूबिन अलैहिम बन गए, अल्लाह के गजब का निशाना हुआ, अल्लाह ने उनको का किक आउट, निकलो, माजूल किया। जब उस साबका उम्मत में कई चोर दरवाजों से गुमराहियां अंदर आ गईं, जिसमें अखलाकी खराबियां, एतिकादी खराबियां, अमली बोझलपन, हैंकी पैंकी करने लग गए थे दीन के साथ, तो अल्लाह ने उनको निकाला और मुसलमानों के लिए उनको डेकोरेशन पीस बनाकर कहा देखो ये इबरत के निशान पड़े हुए हैं, अगर तुमने इन जैसे काम किए तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। और माजरत के साथ इस वक्त उम्मत मुस्लिम उससे बुरे काम कर रही है, मसला सिर्फ ये कि अब इसके बाद कोई चैलेंज करने वाला नहीं आया। अल्लाह के नबी सल्लम की बात पे अपनी आज की बात को पूरा करती हूँ, लिखिए, आप लिखिए, खुद लिखिए, मैं जान के नहीं आपके लिए लिखाया, फिर तो बच्चों वाला कोर्स हो जाएगा, खुद लिखिए, आधा गलत सही होगा कोई बात नहीं, बाद में ठीक होगा। आपने फरमाया लयातियन अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल, मैं ऐसा ऐसा बोलती ताकि आप लिख लें, ला अलबत्ता यातियन्ना आएंगे अला ऊपर उम्मती मेरी उम्मत के, यानी वो हालात मेरी उम्मत पर भी आएंगे, मा जो अता आए थे अला ऊपर बनी इसराइल, बनी इसराइल के मेरी उम्मत पर भी वो हालात लाजिमन वारिद होंगे जो बनी इसराइल पर इससे पहले आए थे, खजवन नाली बिन नाल, जैसे एक जूता दूसरे जूते के मुशाबे होता है, यानी दोनों उम्मतों के हालात में मुशाबियत है। और इतनी प्यारी मिसाल अल्लाह के नबी ने जूतों की दे दी कि देखिए आप एक 39 और दूसरा 38 पाउंड नहीं पहन सकती, एग्जैक्टली वो मिसाल दे के बता दिया, खत्ता के आपने फरमाया कि वो इस मामले तक पहुंच गए थे कि अगर वो तुम बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे कि अगर वो खो एक जानवर होता है छोटा सा गो के बिल में जा घुसे तो तुम भी घुसोगे, और इनमें कोई बदबख्त और शकी ऐसा भी अगर होगा कि वो अपनी माँ से बदकारी करेगा तो तुम में भी कोई ना कोई ज़रूर ये फेल करेगा। तो असल में बात ये है कि इन सूरतों में दर हकीकत उम्मत मुस्लिमा के लिए बतौर निशान इबरत यहूद व नसारा के हालात बार बार लाए जाएंगे और मुसलमानों को खबर दी जाएगी कि कहीं तुम वैसे ना बन जाओ। इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम सिरात अल लजीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इस दुआ पे हम बात को पूरा करेंगे। आज हमारा पहला दिन था तो इसमें चूंकि यही हमें तो सूरत फातिहा को आपने ऐसा दुआ समझना, अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो इंशाल्लाह ताला। कल अल्लाह ने खैर रखी आफियत रखी तो फिर आगे शुरू करेंगे। रब्बिरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ताला हम सब पे राजी हो, जो बीमार हैं उनको सेहत और आफियत अता फरमाए, अल्लाह ताला जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश फरमाए, हमें अपने माँ बाप के लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बनाए, और या अल्लाह हमें अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने वाला बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपका कोई काम कोई ऐसी चीज़ है तो नीचे रिसेप्शन से ले लीजिए ताकि सभी अपने वक्त पे पूरा कर लें।